ओपनिंग नरेशन एकत्र फाउंडेशन प्रस्तुत करता है ज्ञान गोष्ठी, दुनिया के बेहतरीन विचारों और विचारकों का सार अब हमारी भाषा में। ये ऑडियो सारांश एकत्र AI की मदद से तैयार किया गया है।
इंट्रोडक्शन। नमस्कार, आज हम बास्केटबॉल की दुनिया के दो ऐसे दिग्गजों की कहानी में उतर रहे हैं जिनकी टक्कर ने न सिर्फ खेल को एक नई जान दी बल्कि एक ऐसी दोस्ती भी बनाई जिसकी शायद ही किसी ने उम्मीद की हो।
हम बात कर रहे हैं लैरी बर्ड और इरविन मैजिक जॉनसन की।
हाँ, और हमारी ये बातचीत आधारित है उनकी मिलकर लिखी किताब व्हेन द गेम वाज आवर्स पर, जिसे उन्होंने जैकी मैकमुलन के साथ लिखा था।
ये कहानी सिर्फ कोर्ट पर बनाए गए स्कोर या जीती गई ट्रॉफियों की नहीं है, ये तो दो बिल्कुल अलग माहौल से आए इंसानों की कहानी है, उनकी जिद, उनका पैशन
और कैसे उनकी वो जो जबरदस्त टक्कर थी उससे ना सिर्फ उनको बदला बल्कि पूरे NBA को, पूरे खेल को हमेशा के लिए बदल दिया।
बिल्कुल, और ये आज भी उतनी ही रिलेवेंट है। मतलब इससे हमें कॉम्पिटिशन, लीडरशिप और शायद सबसे ज्यादा इंसानी रिश्तों की ताकत के बारे में बहुत कुछ सीखने को मिलता है।
सही कहा। एक तरफ थे लैरी बर्ड, इंडियाना के एक छोटे से गांव फ्रेंच लीग से आए, कम बोलने वाले, एकदम हार्डवर्किंग शूटर, और दूसरी तरफ मैजिक जॉनसन, मिशिगन के लैंसिंग शहर के वो करिश्माई, हमेशा मुस्कुराते हुए, शो टाइम वाले प्लेमेकर।
बिल्कुल, तो कैसे ये दो अलग ध्रुव टकराए और क्या कुछ हुआ, चलिए इसी सफर को थोड़ा और करीब से देखते हैं।
द क्रोनोलॉजिकल जर्नी, द फॉर्मेटिव ईयर्स।
उनकी शुरुआत तो वाकई में जमीन आसमान के फर्क जैसी थी। लैरी बर्ड का बचपन वो फ्रेंच लेक इंडियाना में गरीबी और काफी मुश्किलों में बीता।
हाँ, मैंने पढ़ा है, घर में पैसों की तंगी थी और उनके पिता की शराब की लत।
जी, और फिर उनकी आत्महत्या। इन सब चीजों का लैरी पर बहुत गहरा असर पड़ा। ये वो मुश्किल हालात थे जिन्होंने शायद लैरी के अंदर एक आग जलाई, बास्केटबॉल के जरिए, यू नो, इस सबसे बाहर निकलने की।
सही। और उनकी माँ जॉर्जिया बर्ड ने अकेले ही कितनी ही नौकरियां करके परिवार पाला, इसी सब ने शायद लैरी में वो जिद और वो जो कहते हैं ना कड़ी मेहनत वाली बात कि कुछ आसानी से नहीं मिलता, कमाना पड़ता है।
हाँ बिल्कुल, वो टैग भी तो था, हिक फ्रॉम फ्रेंच लिक।
हाँ, फ्रेंच लिक का देहाती, ये तमगा मिला जरूर उन्हें, पर शायद इसने उन्हें और मजबूत ही बनाया, खुद को साबित करने की उनकी भूख को और बढ़ा दिया।
वहीं दूसरी तरफ इरविन मैजिक जॉनसन का बचपन देखें तो एकदम अलग। लैंसिंग मिशिगन में एक बड़ा, खुशहाल और बहुत सपोर्टिव परिवार था।
अच्छा।
उनके माता पिता इरविन सीनियर और क्रिस्टीन, उन्होंने घर में एक स्टेबिलिटी और पॉजिटिविटी का माहौल रखा। मैजिक तो बचपन से ही लीडर टाइप थे, चेहरे पर हमेशा स्माइल, और खेल उनके लिए जैसे एक सेलिब्रेशन जैसा था।
उनमें वो बात थी लोगों को साथ लेकर चलने वाली। उनके पेरेंट्स ने सिखाया था कि सक्सेस का असली मजा तब है जब उसे दूसरों के साथ शेयर किया जाए।
और वही सोच उनके खेल में भी दिखती थी। वो सिर्फ स्कोरर नहीं थे, वो पूरी टीम को खिलाते थे, खेल को एक आर्ट की तरह पेश करते थे।
द राइज एंड द स्ट्रगल।
अच्छा, तो ये दोनों पहली बार आमने सामने कब आए?
इनकी किस्मत पहली बार नेशनल लेवल पर टकराई 1979 के NCAA कॉलेज बास्केटबॉल चैंपियनशिप फाइनल में।
वो मशहूर मैच।
हाँ, लैरी बर्ड की इंडियाना स्टेट यूनिवर्सिटी का मुकाबला मैजिक जॉनसन की मिशिगन स्टेट यूनिवर्सिटी से था, और वो मैच अमेरिका में कॉलेज बास्केटबॉल के इतिहास का सबसे ज्यादा देखा जाने वाला मैच बन गया था। रिकॉर्ड तोड़ दिया था उसने।
और जीता कौन?
मिशिगन स्टेट, मैजिक की टीम। मैजिक के लिए तो ये मतलब नेशनल हीरो बनने जैसा था, उनकी शो टाइम बास्केटबॉल का जादू चल गया था।
और बर्ड के लिए?
बर्ड के लिए ये हार एक कांटे की तरह चुभ गई। कहते हैं उसी दिन से बर्ड के मन में मैजिक को हराने की एक जिद बैठ गई। ये थी उनकी प्रोफेशनल राइवलरी की बिल्कुल शुरुआत। फिर दोनों NBA में आ गए, बर्ड बॉस्टन सेल्टिक्स के लिए, मैजिक लॉस एंजलिस लेकर्स के लिए।
और ये सिर्फ दो प्लेयर्स का आमना सामना नहीं था, ये दो टीमों का, दो शहरों का, दो कोस्ट्स का, ईस्ट कोस्ट बनाम वेस्ट कोस्ट, और खेलने के दो बिल्कुल अलग स्टाइल्स का टकराव था।
हाँ, बर्ड की सेल्टिक्स जानी जाती थी अपनी टफनेस, डिसिप्लिन और डिफेंस के लिए।
बिल्कुल, और मैजिक की लेकर्स मशहूर थी शो टाइम के लिए, तेज, फ्लैशी, ग्लैमरस बास्केटबॉल।
और उस वक्त मतलब 80s की शुरुआत में NBA की हालत भी तो कुछ खास अच्छी नहीं थी।
नहीं, बिल्कुल नहीं। TV रेटिंग्स गिर रही थीं, ड्रग स्कैंडल्स ने लीग की इमेज खराब कर दी थी। कई बार तो सोचिए फाइनल मैच भी लाइव नहीं, टेप रिकॉर्डिंग में देरी से दिखाए जाते थे।
अरे बाप रे!
ऐसे माहौल में बर्ड और मैजिक का आना और उनकी ये जबरदस्त राइवलरी लीग के लिए संजीवनी बूटी साबित हुई।
सही बात है, उनकी टक्कर ने लोगों में बास्केटबॉल का क्रेज फिर से जगा दिया।
हर मैच एक इवेंट बन गया था। उन्होंने न सिर्फ स्टेडियम भरे बल्कि टीवी पर ऑडियंस को वापस खींचा। उनकी कहानी वो छोटे शहर का वाइट हीरो बना बड़े शहर का ब्लैक सुपरस्टार। इसने कल्चरल बैरियर्स को भी तोड़ा और खेल को ग्लोबल बनाने में बहुत मदद की।
पीक अचीवमेंट्स एंड लेगेसी।
उनकी राइवलरी का पीक कब था?
मेरे ख्याल से 1984 का NBA फाइनल, सेल्टिक्स बनाम लेकर्स। वो 7 मैचों की सीरीज एक जंग की तरह लड़ी गई थी। बहुत फिजिकल, बहुत इंटेंस।
हाँ, वो केविन मैकेल वाला इंसिडेंट भी तो उसी में हुआ था।
बिल्कुल, जब सेल्टिक्स के केविन मैकेल ने लेकर्स के कर्ट रैम्बिस को गर्दन से पकड़कर गिरा दिया था, वो सीरीज की कड़वाहट का जैसे एक सिंबल बन गया।
और नतीजा?
अंत में सेल्टिक्स जीती, यानी बर्ड ने अपना बदला ले लिया। मैजिक के लिए वो हार बहुत दर्दनाक थी, खासकर फाइनल मोमेंट्स में कुछ गलतियां हुई और क्रिटिक्स ने उन्हें ट्रेजिक जॉनसन तक कह दिया था।
ओ, लेकिन यही हार मैजिक के लिए और बड़ी मोटिवेशन बनी। अगले सालों में 1985 और फिर 1987 में मैजिक की लेकर्स ने बर्ड की सेल्टिक्स को फाइनल्स में हराया।
तो ये अदला बदली चलती रही। उन्होंने मिलकर 80s में 8 NBA चैंपियनशिप्स जीती। बर्ड ने 3, मैजिक ने 5। लीग पर पूरी तरह छाए रहे वो दोनों।
जी, और उनकी लेगेसी सिर्फ ट्रॉफियों में नहीं है, उनका असर खेल पर आने वाले प्लेयर्स पर बहुत गहरा रहा। उन्होंने दिखाया कि राइवलरी आपको बेहतर बना सकती है, और ये भी कि खेल सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं, पैशन और डेडिकेशन भी है।
कोर फिलॉसफी एंड वैल्यूज।
अगर उनके सोचने के तरीके, उनके वैल्यूज की बात करें तो वो भी काफी अलग थे।
हाँ बिल्कुल, उनकी बैकग्राउंड की तरह ही। लैरी बर्ड का फलसफा था, कड़ी मेहनत टैलेंट को हरा सकती है। उनके लिए प्रिपरेशन ही सब कुछ थी। वो मानते थे कि इज्जत कमानी पड़ती है, वो प्लेट में सजी हुई नहीं मिलती। उनका एटीट्यूड थोड़ा रियलिस्टिक, शायद दुनिया को लेकर थोड़ा शक करने वाला भी था, शायद उनके शुरुआती संघर्षों की वजह से।
उनका वो एक फेमस कोट है ना, जिसका मतलब है कि मैं आराम की स्थिति में रहकर सहज महसूस नहीं करता।
बिल्कुल, आई एम नॉट कम्फर्टेबल बीइंग कम्फर्टेबल।
ये दिखाता है कि वो हमेशा और बेहतर होना चाहते थे। हर क्रिटिसिज्म, हर डाउट उनके लिए फ्यूल का काम करता था। कम बोलते थे, लेकिन उनका खेल, उनकी मेहनत बोलती थी।
और मैजिक?
दूसरी तरफ मैजिक जॉनसन का फलसफा था, एंजॉयमेंट और जीत साथ साथ चल सकते हैं। वो मानते थे कि बास्केटबॉल इफेक्टिव होने के साथ साथ एंटरटेनिंग भी होना चाहिए।
शो टाइम।
हाँ, पॉजिटिविटी, टीम को साथ लेकर चलना, दूसरों को अच्छा महसूस कराना, ये सब उनके नेचर का हिस्सा था। वो कोर्ट पर एक मैजिशियन थे जो ऑडियंस और अपनी टीम दोनों का दिल जीत लेते थे।
उनका भी एक मशहूर कोट है, एक्सेलेंस कोई स्किल नहीं है, ये एक एटीट्यूड है। वो सिर्फ जीतना नहीं चाहते थे, बल्कि स्टाइल से, खुशी से जीतना चाहते थे।
लेकिन इतने फर्क के बावजूद कुछ तो कॉमन रहा होगा।
हाँ, एक चीज दोनों में एकदम समान थी, जीतने की जबरदस्त जुनूनी इच्छा, और वो एक दूसरे के लिए बहुत बड़ी प्रेरणा थे। बर्ड ने खुद माना है कि मैच के बाद वो सबसे पहले मैजिक का बॉक्स स्कोर देखते थे।
अच्छा, मतलब अपने स्कोर से भी पहले?
हाँ, कि मैजिक ने कितने पॉइंट्स लिए, कितने रिबाउंड्स, कितने असिस्ट। ये दिखाता है कि उनका राइवल उनके लिए कितना बड़ा बेंचमार्क था।
3 पिविटल टर्निंग पॉइंट्स।
सालों तक तो ये जबरदस्त राइवलरी चली, लेकिन फिर रिश्ते में बदलाव कैसे आया? कोई टर्निंग पॉइंट्स रहे?
हाँ, कुछ ऐसे मोड़ जरूर आए जिन्होंने इस रिश्ते की दिशा ही बदल दी। पहला मोड़ शायद थोड़ा अनौपचारिक था, लेकिन इम्पोर्टेंट था।
कौन सा?
वो था 1985 का कॉन्वर्स शूज का विज्ञापन शूट।
अच्छा, हाँ।
ये पहली बार था जब उन्होंने कोर्ट के बाहर पर्सनल लेवल पर एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड किया। इसके लिए मैजिक लैरी के घर फ्रेंच लिक गए थे।
उनके घर गए?
हाँ, उन्होंने लैरी की माँ के हाथ का बना खाना खाया, उनके घर पे वक्त बिताया। इस मुलाकात ने दोनों को एक दूसरे का, वो जो कहते हैं ना, ह्यूमन साइड दिखाया। दुश्मन वाली इमेज थोड़ी धुंधली हुई, और शायद दोस्ती का पहला बीज यहीं पड़ा। उन्हें एहसास हुआ कि खेल के लिए उनका पैशन, उनका डेडिकेशन कितना एक जैसा था।
और दूसरा बड़ा मोड़, वो तो शायद सबको पता है।
हाँ, वो आया नवंबर 1991 में, जब मैजिक जॉनसन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दुनिया को बताया कि वो HIV पॉजिटिव है।
ओह, वो तो एक शॉक था पूरी दुनिया के लिए।
बिल्कुल, खेल जगत और पूरी दुनिया सन रह गई थी। उस समय HIV को लेकर बहुत डर और गलत फहमियां भी थीं।
सही है।
ये वो पल था जिसने बास्केटबॉल और राइवलरी को बहुत पीछे छोड़ दिया। किताब में लिखा है कि जब लैरी बर्ड ने खबर सुनी तो वो टूट से गए, अपने घर में अकेले रोए थे। राइवलरी की सारी फीलिंग्स जैसे चिंता और दोस्ती में बदल गईं। बर्ड उन पहले लोगों में थे जिन्होंने पब्लिकली और प्राइवेटली मैजिक का साथ दिया, उस वक्त जब कई लोग उनसे दूरी बना रहे थे। ये उनके रिश्ते का एक बहुत बड़ा डिसाइसिव मोड़ था।
और तीसरा टर्निंग पॉइंट
वो था 1992 का बार्सिलोना ओलंपिक्स और ड्रीम टीम का बनना।
हाँ, ड्रीम टीम।
ये पहली बार था जब लैरी बर्ड और मैजिक जॉनसन एक ही टीम में खेल रहे थे, टीममेट्स बनकर।
कमाल था वो।
हाँ, अमेरिका की उस हिस्टोरिक टीम में माइकल जॉर्डन जैसे और भी लेजेंड्स थे, लेकिन बर्ड और मैजिक का साथ खेलना एक अलग ही बात थी। उन्होंने साथ में गोल्ड मेडल जीता, वो एक शेयर्ड सक्सेस का एक्सपीरियंस था। बर्ड ने बाद में एक किस्सा सुनाया था कि ओलंपिक के दौरान उनकी पीठ में बहुत दर्द रहता था और मैजिक हमेशा उनकी मदद करने, उन्हें सहारा देने की कोशिश करते थे। तब बर्ड ने सोचा, ये वही आदमी है जिससे मैं इतने सालों तक नफरत करता रहा, जिसके खिलाफ जीतने के लिए मैंने सब कुछ दांव पर लगा दिया।
वाह।
उस एक्सपीरियंस ने उनके बीच जो रिस्पेक्ट और दोस्ती थी उसे और गहरा कर दिया।
ह्यूमन लेसन्स इन रिफ्लेक्शन।
लैरी बर्ड और मैजिक जॉनसन की कहानी सिर्फ स्पोर्ट्स तक ही सीमित नहीं है ना, ये हमें लाइफ के बारे में भी बहुत कुछ सिखाती है, ऐसी बातें जिनसे हम सब रिलेट कर सकते हैं।
बिल्कुल। सबसे पहली बात तो कंपटीशन का नेचर। उनकी कहानी दिखाती है कि एक हेल्दी और इंटेंस कंपटीशन आपको कैसे बेहतर बनने के लिए पुश कर सकता है।
हाँ, ये जरूरी नहीं कि आप अपने राइवल से नफरत ही करें।
सही।
आप उनका सम्मान कर सकते हैं, उनसे सीख सकते हैं और उनकी मौजूदगी आपको अपना बेस्ट देने के लिए मोटिवेट कर सकती है। बर्ड और मैजिक ने एक दूसरे को ग्रेट बनाया, इसमें कोई शक नहीं।
बिल्कुल। और दूसरी बात लीडरशिप स्टाइल्स की।
लैरी बर्ड का लीडरशिप था लीडिंग बाय एग्जाम्पल, शांत, फोकस्ड, मेहनत पर आधारित। और मैजिक का था करिश्माई, वोकल, पॉजिटिव एनर्जी फैलाने वाला। दोनों ही जबरदस्त सक्सेसफुल रहे।
यह हमें सिखाता है कि लीडरशिप का कोई एक फिक्स्ड फॉर्मूला नहीं होता। सबसे जरूरी है ऑथेंटिसिटी। आप जैसे हैं वैसे ही लीड करें।
सही बात है। और शायद सबसे गहरा सबक तो ह्यूमन कनेक्शन के बारे में है।
हाँ, कैसे दो इतने अलग इंसान जो सालों तक एक दूसरे के कट्टर दुश्मन समझे जाते थे, मुश्किल वक्त में एक दूसरे के सबसे बड़े सपोर्टर बन गए।
उनकी कहानी दिखाती है कि कितने भी डिफरेंस हो, कॉमन ग्राउंड मिल ही जाता है। एम्पथी, रिस्पेक्ट और समय के साथ जो समझ बढ़ती है, वो किसी भी राइवलरी को दोस्ती में बदल सकती है।
ये याद दिलाता है कि हमारी बाहरी पहचान, जैसे कि रेस, बैकग्राउंड, स्टाइल, इन सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट हमारी अंदर की इंसानियत होती है।
बिल्कुल। जब मैजिक को HIV हुआ तो बर्ड ने उन्हें एक राइवल की तरह नहीं देखा, बल्कि एक इंसान, एक दोस्त की तरह देखा। ये है ह्यूमन कनेक्शन की ताकत।
थ्री फाइनल टेकअवेज।
तो इस कमाल की कहानी से हम तीन मुख्य बातें क्या लेकर जा सकते हैं? पहली, एक इमोशनल इनसाइट। सबसे कड़वी लगने वाली राइवलरी भी गहरे सम्मान और सच्ची दोस्ती में बदल सकती है, खासकर तब जब जिंदगी हमारे सामने मुश्किल चुनौतियां रखती है। सहानुभूति और इंसानियत का रिश्ता किसी भी दीवार को गिरा सकता है।
बिल्कुल। दूसरी, एक इंटेलेक्चुअल इनसाइट। बौद्धिक स्तर पर देखें तो ये कहानी सिखाती है कि जो चीजें विपरीत दिखती हैं वो अक्सर एक दूसरे को पूरा करती हैं। बर्ड और मैजिक के फर्क ने ना सिर्फ उनकी राइवलरी को दिलचस्प बनाया, बल्कि NBA को बचाने और उसे ग्लोबल बनाने के लिए जरूरी डाइवर्सिटी और अपील भी दी। उनकी भिन्नता ही उनकी कलेक्टिव ताकत बनी।
और तीसरी, एक यूनिवर्सल इनसाइट। और सबसे प्रैक्टिकल यूनिवर्सल सबक ये है कि महानता अक्सर कम्फर्ट जोन से बाहर निकल कर ही मिलती है, चाहे वो बर्ड का खुद को साबित करने का संघर्ष हो या मैजिक का ट्रैजिक जॉनसन के टैग से उभरकर वापसी करना। दोनों ने मुश्किलों को मोटिवेशन में बदला। सच्ची एक्सीलेंस लगातार खुद को बेहतर बनाने के एटीट्यूड से आती है।
क्लोजिंग नरेशन।
फिर मिलेंगे अगले अंक में एक नई विश्वविख्यात व्यक्ति, एक नई किताब और एक नए विचार के साथ जो हमारी दुनिया को आकार देता है। ये ऑडियो सारांश आपके लिए कलेक्टिव फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत है।